पावर की आजमाइश की कहानी। आप देखें कुरान की खूबसूरती यह है, हम कहते हैं ना कि कुरान जो है वो इंसान को अमल पर ले आता है। हाँ बिल्कुल सही है, कुरान असल में हिदायत की किताब है और इंसान को अमल पर ले आता है। इसी अमल का एक हिस्सा क्या आपका और मेरा थॉट प्रोसेस भी है? कुरान अमल पे लाने से भी पहले आपकी और मेरे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करता है। मिसाल के तौर पे आप शेर को देख के पहले भागती हैं और बाद में सोचती हैं कि शेर आ गया, या पहले सोचती हैं शेर को देख के फौरन इंस्टेंटेनियसली शेर है मुझे कहा जाएगा भागो, पहले सोचती हैं ना? कुरान का भी ये मिजाज और ये स्टेप है, तदब्बुर के अंदर ये स्टेप आता है कि कुरान पढ़ के आप पहला जो स्टेप लेते हैं वो होता है कुरान आपकी अकल को, आपकी इंटेलेक्ट को, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करता है। उसके बाद आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, उसके बाद आप अमल के लिए आगे बढ़ते हैं। और कुरान क्या करता है, बाज़ोकात कुरान वही रियलिटीज जो सब जानते हैं उन्हीं को बार बार मेंशन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत प्रोमिनेंट रियलिटी, कुरान कहता है कि हमने जमीन से पौधों को निकाला। किसको नहीं पता कि पौधे जमीन से निकलते हैं? कोई कहता है आसमान से निकलते हैं पौधे, या सिर्फ मुसलमानों को पता है कि वेजिटेशन जमीन से निकलती है? ये रियलिटी ऐसी है जो मुसलमानों के पास सिर्फ इल्म है, यह वर्ल्ड वाइड रियलिटी है। पौधे जमीन से निकलते हैं, ना दीवारों से निकलेंगे और ना आसमानों से निकलेंगे इन जनरल, सही? यही कुरान में लिखा है। तो फिर कुरान ने खास बात क्या बताई, कुरान ने क्या थॉट प्रोसेस ट्रिगर किया ये बता के कि हमने जमीन से नबातात उगाए? कुरान ने आपके थॉट प्रोसेस को हिलाया, जैसे जमीन से नबातात निकलती हैं ऐसे तुम कयामत के दिन जमीन से निकलोगे। कुरान ने उसी रियलिटी को रिमाइंडर बना दिया। समझ आई? बात एक ही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुरान ने उसको रियलिटी की जगह रिमाइंडर बना दिया कि सही है, सभी को पता है कि पौधे निकलते हैं, तुम इससे आगे बढ़ के सोचोगे। ये तुमको एक तशबीह देगा ये सोचना, जिस तरह ये पौधा निकल रहा है, वो जो छोटा सा बीज था और उससे इतना बड़ा पौधा निकल आया, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जब हम एशेज बन जाएंगे वी विल बी लेस देन अ सीड, तो हम पूरा इंसान बन के खड़े हो जाएंगे? तुम्हारी अकल काम नहीं करती? जब इतने से बीज से इतना बड़ा दरख्त बन सकता है, तो जब तुम जो हो वो डीकम्पोज होके सीड से भी कम रह जाओगे, अल्लाह तब भी तुमको दोबारा से रेजरेक्ट कर सकता है। यह है अल्लाह की शान और यह है अल्लाह का कलाम। अल्लाह जब कहानी सुनाता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कहानी नहीं सुना रहा होता, अल्लाह बहुत कुछ दिमाग में ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा होता है। जब तक दिमाग में हिलजुल नहीं होगी, वो जैसे कुछ दिन पहले आपको एक जुमला मैंने कोट किया था और आप ही में से एक लिसनर ने यह जुमला बोला था कि सूरह कहफ सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग का फर्नीचर हिल रहा है। और मुझे वो बात इतनी प्यारी लगी थी, मुझे उसी से ये बात जहन में आई कि हकीकत है कि ये दिमाग का फर्नीचर हिलना प्राइमरी स्टेप है, इसके बाद आप अमल पर दौड़ते हैं। इसलिए कि जब दिमाग आपको खौफ दिलाएगा आखिरत का, मौत का, जहन्नुम का, हिसाब किताब का, सिरात का, जब भी तो आप अमल पर दौड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये जितनी भी कहानियां सुनाई हैं, इन सब का मकसद यही है कि जहन दिल थोड़ा सा अंदर से हिले। जमीन भी जब हिलती है तब पौधा बाहर आता है, जमीन की लेयर्स को फाड़ के बाहर आता है ना, तो वो मूवमेंट पहले जमीन के अंदर होती है, फिर विजुअली पौधा आपको सीडलिंग की शक्ल में नजर आता है। वो जो दिलो दिमाग अंदर से हिलेगा उसका विजुअल इम्पैक्ट आपके अमल में नजर आएगा। तो अल्लाह ताला अब इस कहानी के जरिए हमें एक और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान असल में जो किताब है वो हिदायत की है एब्सोल्युटली, बट साथ साथ मुझे लगता है कुरान इज अ चेंजिंग पर्सपेक्टिव बुक। कुरान आपने आपके सोचने के अंदाज को बदल देता है। सबको पता है मरना है, सबको पता है मुश्किल आती है, सबको पता है खुशी खुश करती है, सबको पता है चोट हर्ट करती है, बट एक मोमिन के लिए सारे मामलात बिल्कुल अलग होते हैं। किस वजह से? बजाहिर सब एक जैसा होता है, काफिर के लिए भी और मोमिन के लिए भी, मोमिन का माइंडसेट अलग होता है। तो कुरान आपका परसेप्शन बदलने वाली किताब है। अगर कुरान पढ़ पढ़ के मेरा माइंडसेट नहीं बदल रहा, अगर कुरान पढ़ पढ़ के मेरा परसेप्शन नहीं ठीक हो रहा, तो मुझे अपने कुरान पढ़ने के तरीके को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। लोग कहते हैं हम तो इतने साल से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, हमें तो कैसी खास चीज नजर नहीं आई। कैसे नजर आएगी? आपका तरीका मोनोटोनस है, वो आपको अपील नहीं कर रहा है। जाइए जाकर किसी से कुरान को सुनिए, फिर देखिए एक आयत आपको अंदर से कैसे हिला देगी। मैं हकीकत बता रही हूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम कुरान का कोर्स किया था, वो एक जुमला मेरे दिमाग में ऐसा फंस गया था कि उठते बैठते मुझे आता था, और वो एक जुमला यही था, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी ही। कोई बड़ी आयत नहीं थी, कोई बड़ा हुक्म नहीं था, मगर मैं जब कुरान सुनती थी तो मेरे जहन में और मुझे उठते बैठते चलते फिरते बस कुरान सुनकर यही एक फ्रेज, यही पहली आयत मुझे याद हुई थी अल्लाह की रहमत से। लोगों को जो है वो सूरह रहमान याद होती है, लोगों को सूरह यासीन याद होती है, लोगों को फबी आई आला इरबी कुमा तो करीबान याद होता है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम 2004 में कुरान का कोर्स किया था और मैं कुरान के सामने आकर बैठी थी, ये एक जुमला मेरे जहन के अंदर ऐसे लगता था जैसे नक्श हो गया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। इसलिए कि आप कुरान के सामने आकर बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दी हुई हैं, और हम उन नेमतों का कितना मिस यूज करते हैं। सिवाय शर्मिंदगी के इंसान को कुछ नहीं आता। वो जुबान जो जिक्र के लिए दी गई थी, वो जुबान जो अल्लाह की दावत के लिए दी गई थी, वो जुबान जो इखलाक बेहतरीन अपनाने के लिए दी गई थी, वो जुबान जो अल्लाह का कलाम पढ़कर पढ़ने समझने और आगे पढ़ाने के लिए दी गई थी, हम उसको कहां इस्तेमाल करते हैं? हम उसको अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उसको अल्लाह के दीन के बारे में शकूक लाने के लिए और डिवेलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उसी जुबान को किस किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता। तो कुरान हर लम्हा आपको और मुझे जगाने की कोशिश करता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कुरान मेरा पर्सपेक्टिव बदल दे और उसी डायरेक्शन में बदले, अल्लाह जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, जो हक का रास्ता है, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो अंबिया और सालेहीन और शोहदा का रास्ता है। तो आगे ये कहानी आ रही है, ज़ुल्करनैन की कहानी है, और ज़ुल्करनैन एक बहुत बड़ा बादशाह जो है वो दुनिया का था, जिसने दुनिया का सफर किया। और इसके लिए आता है कि अपने वक्त के जो भी नोन टाइम्स की जगह थी उसमें इसने अपने किंगडम को खूब फैलाया। आप देखें हजरत मूसा और हजरत खदर की कहानी के बाद इस कहानी को लाया जा रहा है। हजरत खदर और हजरत मूसा की कहानी में भी सफर का जिक्र आता है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया इल्म हासिल करने के लिए, और ज़ुल्करनैन की कहानी में भी सफर का जिक्र आता है। लेकिन बताने का मकसद यहां क्या है कि क्यों अल्लाह ताला ने पहले मूसा की कहानी मेंशन की? स्कॉलर्स कहते हैं इसलिए कि अल्लाह की नजर में इल्म के लिए सफर करना ज्यादा अहमियत रखता है। अल्लाह के लिए इल्म के रास्ते में जिहाद करना ज्यादा अहमियत रखता है। हम जानते हैं कि मूसा अलैहि सलाम की कहानी कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछी थी, जो जिनको यहूदियों ने कहा था कि ये कहानी पूछ कराओ, उन्होंने ज़ुल्करनैन की पूछी थी और असाबे कहफ की पूछी थी। दरमियान में जो दो कहानियां लाई गईं बाग वाले की और मूसा अलैहि सलाम की, ये तो उन्होंने नहीं पूछी थी। अल्लाह ताला ने खुद बनी इसराइलियों के यहूदियों को थोड़ा सा जगाने के लिए कि तुम ज़ुल्करनैन के बारे में पूछ रहे हो, मूसा तो तुम्हारे लीडर थे, मूसा तो तुम्हारे रहनुमा थे, मूसा को तो तुम फॉलो करते थे, ज़ुल्करनैन की कहानी में इतने सबक नहीं है जितने तुम्हारे लिए मूसा की कहानी में सबक है, उसको क्यों भूल गए? तो अल्लाह ताला ने उनको एहसास दिला दिया। और ज़ुल्करनैन की कहानी उन्हीं तीन कहानियों में से एक थी जिन तीन सवालात को कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। आयत नंबर 83, किस्सा शुरू हो रहा है ज़ुल्करनैन का, वयस अलूना का अंदिल करनैन, और ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। आपको मालूम है कि जो दो कहानियां कुरैश के सवाल पर बयान की गई थीं, उसमें असाबे कहफ और ज़ुल्करनैन ही थे। लेकिन आप देखें असाबे कहफ की कहानी में यस अलूना का आया था, वो आपसे सवाल करते हैं, सवाल तो उन्होंने उस पर भी किया था, वहां नहीं आया था यस अलूना का, यहां पर आया है यस अलूना का। क्यों? स्कॉलर्स कहते हैं इसलिए कि अहले किताब को कॉन्शियस किया जा रहा है कि तुम सवाल कर रहे हो ज़ुल्करनैन का, ذوالقرنین کا تمہارے بنی اسرائیلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تم نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تم اس چیز کا سوال کرتے جس کا علم تمہارے پاس بھی تھا, جس کی انفارمیشن تمہارے پاس بہت زیادہ تھی تاکہ تم کراس چیک کر سکتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ذوالقرنین کا سوال کیا جس کی کمپلیٹ انفارمیشن تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو, اہل کتاب کو جھنجھوڑا ہے کہ ایسا سوال کر رہے ہو جس کی انفارمیشن تمہارے پاس خود بھی نہیں ہے, تو محمد کو کراس چیک کیسے کرو گے, کیسے بتاؤ گے جو محمد بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ بینیفٹس زیادہ موسیٰ کے قصے میں ہیں. اور آپ اگر آیات کو بھی کاؤنٹ کر لیں جو موسیٰ اور خدر کی تھیں, وہ زیادہ آئی ہیں ذوالقرنین کے مقابلے میں. ذوالقرنین کی کہانی میں آپ کو قصے میں سبق کم ملیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, یہ جو یس الونا کا آیا ہے, اسکالرس کہتے ہیں انہوں نے صرف سوال برائے سوال کیا تھا, عبرت کے لیے کہانی نہیں پوچھی تھی کہ آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یہ کیوں کہانی پوچھ رہے تھے رسول اللہ سے؟ تاکہ چیک کریں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ایگزامن کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ کو, شرمندہ کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ کو. اور یہ یس الونا کا آیا ہے, جو آپ میں سے گرامر کے اسٹوڈینٹس ہیں, یس الونا کا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, دے آر آسکنگ, آئی این جی کے ساتھ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس عربی زبان میں. اگر حالانکہ سوال کر لیا تھا نا انہوں نے 15 دن کے بعد سورہ کہف آئی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیوں نہیں کہا عربی زبان کے مطابق انہوں نے آپ سے سوال کیا یا انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا, ماضی کی بات تھی, سوال تو ہو چکا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, اس کا ترجمہ بنتا ہے پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی. اس لیے کہ عربی گرامر کا اصول ہے اگر فیل آئے گا پاسٹ ٹینس کا تو مطلب ہوگا ایک مرتبہ سوال کیا, ختم ہو گیا. اگر یہاں پر آ رہا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس, اس کا مطلب ہے دیور کنٹینیوسلی آسکنگ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تکلیف دینے کے لیے. بتائیں نا کہانی, آپ بتا کیوں نہیں رہے کہانی؟ یہ انداز اس کے اندر چھپا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہم احادیث سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب 15 دن کے بعد جب تک وحی آئی ہے, ان دا مین ٹائم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے روز پوچھا کرتے تھے. آج آپ بتائیں گے؟ آپ سوچیں اللہ کے رسول کو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہوگی. یہ اس ایک لفظ کے اندر پوری کہانی چھپی ہوئی ہے, یس الونا کا. ہم کہتے ہیں عربی گرامر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, فائدہ تھوڑی ہوتا ہے, ہمارے کون سے ایمان میں اضافہ ہوگا. جب آپ عربی گرامر کو تفسیر سے جوڑیں گے, ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو نہ بڑھائے, ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جس گہرائی میں آپ کو گرامر پڑھنے کے بعد قرآن کی آیات کا فہم اور اسکالرس کے کام کو سمجھ آنے کے لیے توفیق مل جاتی ہے, وہ خالی ترجمے پڑھ کر نہیں آتی ہے. یہ سالونہ کا آپ کو واضح کر رہا ہے کہ وہ بار بار یہ تفصیل جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بادشاہ کے بارے میں انفارمیشن مانگی. ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا جس کے لیے ڈاکیومینٹڈ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ یہ ایک پاورفل کنگ تھا, ریسورسز تھے اس کے پاس, طاقت رکھنے والا تھا. اور یہ دنیا کا ہمیشہ سے اصول رہا, جنرل اصول, کہ جس کو بھی اللہ نے طاقت دی وہ ہمیشہ اپنی طاقت کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا رہا. ہر سپر پاور اپنے اپنے ٹائم میں اپنے بیک یارڈس کو بڑھانے کی پوری کوشش کرتی رہی, یہ جنرل اصول رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سپر پاور کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل میں الملک للہ, بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے. قیامت کے دن اللہ کیا پوچھے گا؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ واحد القہار, آج صرف وہی واحد اللہ ہے جس کا کل اختیار دنیا میں بھی تھا اور آج بھی واضح ہو جائے گا. اللہ ہر سپر پاور کو چیلنج کرتا رہا ہے. یہاں پر بھی ذوالقرنین کی کہانی سے آپ کو ایک سپر پاور کی تصویر ملے گی, لیکن یہ سپر پاور آج کی دنیا کی سپر پاور اور ہسٹری کی سپر پاور سے بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ ذوالقرنین متقی انسان تھا, توحید پر قائم انسان تھا. آپ دیکھیں, چاہے وہ مائٹی سویلائزیشن آف روم تھا یا پرجیا تھا, اپنے اپنے ٹائم پہ سب نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے. ایون برٹش امپائر آج سے 100 سال پہلے, آپ میں سے جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے آپ کو معلوم ہوگا, وہ کہا کرتے تھے سن نیور سیٹس آن اس, एक वक्त था कि वो सुपर पावर थे और दुनिया पर रूल करते थे. आज सुपर पावर वो नहीं रहे हैं. आज सुपर पावर जो है वो अमेरिका के पास जा चुका है. अल्लाह ताला हर बड़ी सुपर पावर को ये बताता रहा कि एक दिन इसको जवाल है. हर उरूज को दुनिया में जवाल है. अब चाहे वो आप सुपर पावर को देख लें या हम छोटे छोटे अपने घरों में जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर समझ के बैठी होती हैं खवातीन, हम किसी सुपर पावर से कम है? अपने शौहरों के सामने जरा हमारा अकड़ तो देखा करें. तुम अपने आप को किसी अमेरिका से कम समझते हैं? आप किसी ट्रंप से कम है? अल्लाह ना करे. तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हर सुपर पावर को जवाल है और ये दुनिया का उसूल है. लेकिन अल्लाह ये जो यहां कहानी लेकर आ रहे हैं वो अल्लाह बता रहे हैं कि ये शख्स ऐसी सुपर पावर रखता था जो कि बहुत ही नेक इंसान था और इसने अपनी ताकत को अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक इस्तेमाल किया. अल्लाह ने जो इसको ताकत दी थी उसने इसके दिमाग के अंदर तकब्बुर का भूसा नहीं भर दिया. वरना दुनिया जानती है हमेशा से जब इंसान को ताकत मिलती है तो इंसान क्या करता है? मुतकब्बिर हो जाता है. इट्स अ जनरल उसूल, जनरल रूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. ये दुनिया का उसूल है. जिसकी जितनी पावर बढ़ती जाती है उसकी उतनी अकाउंटेबिलिटी दुनिया के मामले में आप देखें कम होती जाती है. कौन खड़ा करता है प्राइम मिनिस्टर को कटहरे के अंदर? खड़ा करके देख लिया आपने? हमारे तो नाक के नीचे हो रहा. जितना पावर और इक्तदार बढ़ता है उतना इंसान का तकब्बुर और उसका गलतियों में इन्वॉल्व होना बढ़ना बढ़ता जाता है. आप देखें इसलिए अहादीस आते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबवाबुस सलातीन से दूर रहने का कहा है. अबवाबुस सलातीन का मतलब क्या है? बादशाहों के दरबारों से दूर रहो. क्यों? इसका मतलब यह है कि खुद से पावर अपने लिए मत चाहो, खुद से इक्तदार की तमन्ना मत करो. हमारे दीन में इक्तदार की तमन्ना पसंदीदा नहीं है. इसलिए कि जब जब इंसान जनरली पावर की तरफ आता है यह इंसान के अंदर तकब्बुर लेकर आती है. यह इंसान को गुनाहों की तरफ लेकर जाती है. ये इंसान का क्योंकि एक्सेस टू वर्ल्ड बढ़ जाता है तो शैतान कैसे साथ छोड़ेगा? जितनी ताकत आती है शैतान के फितने में इंसान आता जाता है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आती हैं. आपने वॉर्न किया था मुसलमानों को कि इस ताकत इस इक्तदार के नशे से अपने आप को दूर रखना. यानी आपका कहना यह था कि खुद से क्लेम मत करो, खुद पोजिशन मत मांगो इक्तदार की. खलीफा की पोजीशन खुद मांगी नहीं जाती. ये नहीं कहा जाता मुसलमानों के अंदर कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट प्लीज वोट मी. ये इस्लाम का मिजाज नहीं है. जो हमारे सामने दुनिया के सामने इस वक्त पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना हुआ है और जो पॉलिटिकल लाइन ऑफ एक्शन है इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट इस्लाम. इस्लाम में यह मिजाज ही नहीं है. खिलाफत के लिए अपने आप को खुद वॉलंटियर नहीं किया जाता. किसी अच्छे काम के लिए किसी मिनिस्ट्री के लिए और आपके पास अगर वो डिग्री है तो आप अपने आप को ऑफर कर सकती हैं. बट द मेन पोजीशन ऑफ खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हमेशा उसको देना जो चाहे ना उस जगह को, जो चाहे उसको मत देना. और इसमें बड़ी हिकमतें हैं. जारी बात है इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं हम इसके ऊपर बात करें, लेकिन आप अगर मैं छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखा दूं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर ने खुद नहीं चाहा था कि वो खलीफा बन जाए. आपने दो लोगों को अपॉइंट किया था हजरत खलीफा, हजरत अबू बकर ने. आपने कहा था या तो उमर या अबू उबैदा, इन दोनों के दरमियान में से एक खलीफा चुन लो. अपने आप को बहुत स्विफ्टली एक साइड पे कर दिया था. और इन दोनों ने कहा था कि नहीं, मुसलमानों के लिए इस पोजीशन पर बेहतरीन खलीफा आपसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता. और मुसलमानों ने सब ने हजरत उमर का साथ दिया था. हजरत अबू बकर ने खुद से खलीफा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया ही नहीं था, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की तालीमात जानते थे. इवन हजरत उमर रदी अल्लाह अन के लिए आता है कि वो जब खलीफा बन गए थे तो वो कहा करते थे आई विश मुझे खिलाफत ना मिली होती. इसलिए कि ये जिम्मेदारी इतनी ही बड़ी है. हमारे यहां तो लोग मरे जा रहे होते हैं खिलाफत के लिए और कुर्सी के लिए और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए. क्यों? इसलिए कि ताकत का पावर का नशा ही अलग होता है. आप सोचें जब आप खड़ी रहती हैं 20 मिनट तक सिग्नल के ऊपर सिर्फ इसलिए कि वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है. दिल के किसी कोने में ख्याल तो आता होगा जब 15 गाड़ियां आगे और 15 पीछे जाती हैं, जुबान से तो इन्ना लिल्ला पड़ रहे होते हैं जरा सोचें तो अगर आप उस गाड़ी में आप बैठी होती तो कितना अच्छा लगता। तो ताकत किसको अच्छी नहीं लगती, मतलब पोजीशन किसको अच्छी नहीं लगती, यह है हकीकत। जुबान से हम चाहे गालियां निकाल रहे होते, लेकिन अगर कोई आपसे कहे फॉर एन इंस्टेंस कल से आप इस जगह बैठेंगी और जहां आप बैठी हैं उस गाड़ी वाला यहां बैठेगा, आप सोचने पर मजबूर तो हो जाएंगी। अब कहेंगे हाँ वैसे सौदा बुरा नहीं है, कम से कम सिग्नल में तो टाइम तो नहीं गाना पड़ेगा। और फिर शैतान आपको जस्टिफिकेशन देगा, शैतान कहेगा हाँ देखो आखिर तुम्हें सड़क पे इतना टाइम तुम्हारा बच जाएगा, इतना बफर रख के निकलती हो, 10 मिनट का रास्ता होता है 20 मिनट का बफर रखना पड़ता है। तो यह है हकीकत, ताकत का नशा होता है। ताकत आपको अपने अंदर बिल्कुल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए इंसान जो है वो ताकत में जाके गुनाहों में जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कभी भी खुद से खिलाफत की तमन्ना मत करो, और आपकी ये हिदायत है उसको खिलाफत मत दो जो खिलाफत की तमन्ना करे। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा लगेगा आपको, पैथेटिक ही लगेगा। मगर हम क्या करें, हम इसको ऑल द वे ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला हमारी कौम को इंसाफ पर कायम रहने वाला और इंसाफ के साथ आगे चलने वाला, और प्लीज मैं इंसाफ से किसी चीज का नाम नहीं ले रही, मैं जस्टिस की बात कर रही हूँ, प्लीज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं जब इनसे मिलो तो इनको रिस्पेक्ट शो करो। एक आपने फरमाया 70 से 80 साल की उम्र का बूढ़ा, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो। और हमारे माशरे में वो वक्त आ चुका है, एक वक्त वो था जो हमारा बचपन था, आपकी और मेरे जैसा बचपन, हम सुनते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ओल्ड होम्स होते हैं। आज हमारे मुल्कों के अंदर लोग डोनेशंस मांग रहे हैं, हमने ओल्ड होम खोलना है या हमने अपने ओल्ड होम को एक्सपेंड करना है, प्लीज हमें डोनेशन दीजिए। ये कल्चर हमारे यहाँ आज से 15-20 साल पहले नहीं था और ये अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि हमने बड़ों का इकराम करना छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तीन लोगों से मिलो तो उनके साथ जरूर इकराम करो, 70 से 80 साल का बुजुर्ग। और अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये अल्लाह की तरफ से हक है तुम पर कि इस बूढ़े इंसान की इज्जत करो। सोच लें अपने घरों में अपने माँ बाप को और अपने सास ससुर को। सास ससुर शौहर के माँ बाप हैं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये नहीं कहा था कि सास ससुर का इकराम करो, अल्लाह ने कहा था हर बूढ़े शख्स का इकराम करो। तो फिर सास ससुर तो उससे एक अपग्रेडेड नंबर पे आ गए ना, और हम कितने आराम से कह देते हैं शी इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्यों उनका काम करूं। किसी का काम कर देने से कोई नीचा नहीं हो जाता, आपकी ताकत में कमी नहीं हो जाती, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगी, यकीन रखें बढ़ेगी। आजकल तो हमसे बूढ़ों को मुस्कुरा के देखा नहीं जाता, हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हैं, हम तो मुस्कुरा के आगे चले गए उनको 6 मिनट बाद पता चलेगा। अभी बच्चों की बातें आपको बता रही हूँ, कभी कभी बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देता है। जब मैं आपसे कहती हूँ हमारे बच्चे नहीं है, मॉन्स्टर्स पाल रहे हैं। हाँ सही बता रही हूँ, या तो आप अपने बच्चों को मॉन्स्टर बना रहे हैं या मशीन बना रहे हैं, इन दो में से एक ही चीज बन रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी औलादें यही बन रही हैं। बड़े बड़े जिन हैं हमारे बच्चे, जिन काबू करना तो आसान है, बच्चे काबू करना आसान नहीं है आजकल के। अल्लाह से वो ताकत मांगिए जिनसे आप इन जिनों को काबू कर लें। अल्लाह हम सबको वो ताकत दे और अल्लाह इनको अपना बंदा बनाए। तो एक अल्लाह के रसूल ने कहा था 70 से 80 साल का जो बूढ़ा हो, एल्डरली एज, उसका इकराम करो। दूसरा आपने कहा हामिलुल कुरान, कुरान का इल्म रखने वाला, कुरान का हाफिज, कुरान के इल्म को अमल में लाने वाला। हामिलुल कुरान वो होता है जो इल्म रखकर उसको अमल में लाने वाला हो, उठाने वाला जब ही बनेगा ना, उसका इकराम करो। और तीसरा आपने कहा था वो सुल्तान, वो बादशाह जो जस्ट हो, जो इंसाफ करने वाला हो, उसका इकराम करो, वो रूलर जो शरीयत के मुताबिक अमल करे। तो अल्लाह ताला ने यहां पर अपने रसूल के जरिए मेंशन कर दिया कि असल में रूलर होता कैसा है, जिसमें खुदा खौफी होती है, जिसके अंदर इंसाफ की क्वालिटी होती है, जो जुल्म को रोकता है ना जुल्म करता है اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے. وہ جو حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو سایہ دے گا, جگہ دے گا, جس دن روزے محشر کہیں پر سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک کوالٹی ایسے بادشاہ کی بھی آتی ہے, ایسے رولر کی بھی آتی ہے, جو ظلم سے دور رہنے والا اور ظلم سے اپنے لوگوں کو دور رکھنے والا ہوتا ہے. تو بتا دیا کہ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو یہاں پر ذوالقرنین کے ذریعے ہمیں سکھائی جا رہی ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی اس کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھے تو ہر اقتدار والے پر اپلائی کرتی ہے. اور ہر گھر میں عورت کی ایک اپنی ڈومین ہوتی ہے, آپ کی ایک اپنی سپر پاور ہے, تو آپ پر بھی یہ اپلائی کرے گی. اپنے گھر کے اندر انصاف کو لے کر آئیے. اگر آپ سے سوال کرے کوئی کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کے ایمان کے لیے کیا ہوتی ہے, تو انسان کے ذہن میں کبیرہ گناہ آتے ہیں. انسان کہتا ہے زنا ہو سکتا ہے, چوری ہو سکتی ہے, غیبت ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز. آج کل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز سوشل میڈیا ہو سکتا ہے یا برے دوست ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی چیزیں مینشن کی ایمان کے لیے جو خطرناک ہیں, وہ کبیرہ گناہوں سے بھی آپ نے فرمایا کہ انسان کو اور زیادہ نیچے لے جاتی ہیں. ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بی افسد لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. امیجن کریں کہ کسی فلاک آف شیپ کے لیے سب سے خطرناک کون سا جانور ہوتا ہے؟ بھیڑیا. آپ نے فرمایا ما ذئبانی, دو بھیڑیے جو بھیڑوں میں گھس جائیں گے, فلاک میں گھس جائیں گے, وہ اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے. اور یہاں پر شیپ سے ریزمبلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ایمان کو دیا. انسان کا ایمان سمجھیں شیپ ہے, اگر دو بھیڑیے اس میں گھس گئے وہ سب سے زیادہ ایمان کو کرپٹ کرتے ہیں. اور وہ دو بھیڑیے کون سے ہیں؟ ایک ہے مال کی خواہش, حرص المرء علی مالی, انسان کے مال کی خواہش اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے, اور دوسرا لو آف فیم, شہرت کا نشہ, طاقت کا نشہ. آپ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں ہم بیلنس اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ نے مال کو ناپسندیدہ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں, آپ نے یقیناً فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے, اور یقیناً اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے. لیکن مال آپ کو اللہ سے اگر دور کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے لعنت ہے, اور مال اگر آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے. تو اسی ایک پاور کی, فیم کی, طاقت کی, مال کی کہانی قریش کے پوچھنے کے اوپر سنائی جا رہی ہے جو ذوالقرنین کی آ رہی ہے, اور وہ آگے انشاءاللہ کل شروع کریں گے. جو آیت آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, ان کو بتا دیجئے, ان قریب میں تم کو اس کے ذکر میں سے پڑھ کر سناؤں گا. سأتلو, میں پڑھ کر سناؤں گا. کہاں سے پڑھ کر سناؤں گا؟ وہی جو جبرائیل مجھے بتائیں گے وہ میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا. انشاءاللہ کل اس پر مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن کے اسباق کے اوپر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, بالکل جیسے ہماری زندگی میں کھانا پینا ہمارا حصہ ہے. اللہ ہمارے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس سے ہمارے پرسپشنز کا بدلنا, اللہ اس کو آسان بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونافعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.